الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات تلاوت کی گئیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ایمان ریلیٹڈ پوائنٹ، وہ ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا اور ڈسکس کرنا ہے آج. پہلے بھی تھوڑا ڈسکس ہوا ہے، لیکن مزید اس کو آج تھوڑا کھولنا ہے آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ پچھلی کلاس کی جو سمری آپ لوگوں کو بھیجی تھی، ماشاء اللہ کافی لوگوں نے اس کے اندر جو کوئز کوشچنس تھے ان کے جوابات بھی دیے اور صحیح جواب دیے اکثر اسٹوڈنٹس نے، تو ماشاء اللہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں، ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں. اس میں ایک جو سب سے پہلا کوئز کوشچن تھا سمری کے اندر، وہ شیطان سے متعلق تھا نا، کہ یہ جو ابلیس تھا تو اس نے اتنی عبادت کری زمین اور آسمان کے چپے چپے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کر سکا، ٹھیک ہے، اطاعت نہ کر سکا. تو اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ تو اس کا جواب جیسے کہ ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کے ماحول میں رہ رہا تھا، صحبت میں رہ رہا تھا، ان کی کمپنی میں تھا. تو جیسے کہ یو بیکم لائک یور کمپنی، تو آؤٹورڈلی کمپنی کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ یعنی آؤٹورڈلی ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آؤٹورڈلی آپ کے اوپر کمپنی کا اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ از ناٹ انف، یہ سفیشنٹ نہیں ہے کہ آؤٹورڈ اثر جو ہے وہی بس ہو، اس سے زیادہ اثر نہ ہو، ٹھیک ہے. آؤٹورڈ اثر از ویری امپورٹنٹ، یعنی آپ آؤٹورڈلی چینج ہو جائیں. فار ایگزامپل آپ جب جیسے فار ایگزامپل کوئی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو تبلیغی جماعت کی یعنی 3 days کی جماعت میں جاتا ہے یا 40 days کی جماعت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس 40 days کی جماعت کے اندر جو وہ رہتا ہے نا، مسجد کے اندر رہتا ہے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہی اس کی صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، وہ تبلیغ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ سارے سارے ماشاء اللہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. 40 days تک جب کوئی شخص اس ماحول کے اندر رہتا ہے، مسجد کے ماحول میں اور نیک لوگوں کے ماحول میں نا، تو آٹومیٹیکلی اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے یہ لڑکا جو ہے جو پہلے یعنی ویسٹرن کلوتھنگ پہنتا تھا اور اس کی داڑھی نہیں تھی اور یہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھا نہیں کرتا تھا، تو اب جو ہے نا یہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کلوتھنگ بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ظاہری اثر ہونا، اپیرنٹ چینج، ٹھیک ہے. تو اپیرنٹ چینج از ویری امپورٹنٹ ان آور دین، بیکاز واٹ ہیپنز از دا وے اٹ ورکس اس کے آؤٹورڈ جب اپیئرنس چینج ہوتی ہے نا تو اس کا اثر سلولی انورڈ اپیئرنس کے اوپر پڑتا ہے، ठीक है, लेकिन वो कब पड़ता है, वो उस वक्त पड़ता है जबकि इंसान इस आउटवर्ड अपेयरेंस को जो है वो पसंद भी करता हो और चाहता हो कि उसका इनवर्ड भी चेंज हो जाए, चाहता हो कि इनवर्ड भी चेंज हो जाए, तो इवेंचुअली आउटवर्ड का जो असर है वो इनवर्ड के ऊपर पड़ता है, ठीक है। लेकिन शैतान जो है उसके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जो आउटवर्ड अपेयरेंस कर रहा था तो उसके अंदर उसकी कुछ अपनी रीजंस थी, ठीक है। जो भी रीजंस थी अल्लाह बेहतर जानता है, एग्जैक्टली हमने उससे कभी जाके पूछा तो नहीं है, अल्लाह ना करे हमें कभी उससे बात करने की का मौका मिले कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन उसका जो आउटवर्ड अपेयरेंस था उसके इनवर्ड अपेयरेंस के ऊपर असर नहीं डाल सका, ठीक है, तो उस वजह से वो अल्लाह ताला की अताअत ना कर सका, ठीक है। तो समझ में बात यही आती है कि वो फिर जो सजदे कर रहा था वो खाली अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा था, क्योंकि हमने आपको नफ्स का कॉन्सेप्ट पहले समझाया है क्लासेस के अंदर, ठीक है। नफ्स जो समझाया है ना कि भाई हमारी दो एनिमीज होती हैं, एक एनिमी तो शैतान है जो कि आउटवर्ड एनिमी है, और एक एनिमी हमारा अपना नफ्स होता है जो कि हमारे अंदर होता है, आवर ओन लोअर सेल्फ, ठीक है। इंग्लिश में इसको लोअर सेल्फ भी कहते हैं, इनर सेल्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई अच्छे काम कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ अपने नफ्स को खुश करने के लिए कर रहा होता है, वो अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये भी एक तरह का शिर्क होता है, ये भी एक तरह का शिर्क होता है। दिस इज ऑल्सो लाइक एस्क्राइबिंग पार्टनर्स टू अल्लाह सुब्हान तआला, बट हियर व्हाट आर यू एस्क्राइबिंग एज अ पार्टनर टू अल्लाह, यू आर एस्क्राइबिंग योर ओन इनर सेल्फ एज अ पार्टनर टू अल्लाह, ठीक है। अपने नफ्स को जो है वो आप अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आपको खालिस अल्लाह के लिए करने थे वो आप अल्लाह के लिए करने के बजाय आप अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसी को तो शिर्क कहते हैं। तो शैतान जो है ना वो कुछ इस किस्म का काम कर रहा था, इस वजह से उसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं आ सकी, ठीक है, अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं आ सकी। अगर उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती ना, अगर उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती सजदे कर करके, तो जब अल्लाह ताला ने उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा तो उस वक्त वो इनकार ना कर सकता, ठीक है। देखिए शैतान ने इनकार क्यों किया था, उसने एक रीजन बताई थी इनकार करने की। जब अल्लाह ताला ने बाद में उससे पूछा ना कि जी तुमने क्यों नहीं सजदा किया, तो उसने क्या रीजन बताई थी, आप लोग बताएं जरा, आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी ना, रीजन क्या बताई थी उसने। स्टूडेंट्स लिखें चैट विंडो के ऊपर इसका आंसर, अगर किसी को मालूम है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने ना करने की एक लॉजिक, एक रीजन बताई थी, वो रीजन क्या थी। दैट ही बिलीव प्रॉफिट आदम वॉज बीनीथ हिम, ठीक है, बीनीथ हिम यानी फिजिकली बीनीथ हिम, नीचे होते थे क्या, ये ऊपर की फ्लोर पे रहता था, वो नीचे की फ्लोर पे रहते थे। आई एम मेड ऑफ फायर एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मेड ऑफ फायर, ही सेड दैट आई एम बेटर देन आदम, यू मेड हिम फ्रॉम सॉयल एंड मेड मी फ्रॉम फायर। सॉयल से तो खैर नहीं बनाया था, लेकिन हाँ क्ले कह सकते हैं, और ये बात अभी जुल्कनैन के वाक़े में भी आगे आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ही इज मेड ऑफ फायर एंड ही इज ऑफ क्ले, आई एम ग्रेटर देन हिम, ही सेड दैट ऑल दैट अल्लाह मेड हिम विद फायर एंड अल्लाह मेड आदम अलैहिस्सलाम विद विद सैंड, सैंड नहीं वो तो वही क्ले, ठीक है। और बॉयज में क्या आंसर आ रहे हैं कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है। दैट ही कैन नॉट डू सजदा टू ए पर्सन मेड फ्रॉम सैंड, उससे तकबर आ गया था। आई एम मेड ऑफ फायर एंड ही इज मेड ऑफ क्ले, सो ही इज सुपीरियर टू हिम, आई एम सुपीरियर टू हिम बिकॉज ही बिलीव दैट आई एम मेड ऑफ फायर। जी, तो ये उसने यही सारी बातें हैं, सैंड की बजाय बस आप क्ले का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो एग्जैक्टली जवाब सही हो जाएगा। तो उसने ये लॉजिक पेश करी थी, साइंटिफिक लॉजिक, ठीक है। देखें इसका जो जवाब था ना, ये बड़ा साइंटिफिक जवाब था, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन नेचर एंड ही इज टेलिंग अल्लाह सुब्हान ताला हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल, ठीक है, कि फायर जो होती है ना वो मिट्टी से, गंदी मिट्टी से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि फायर जो होती है वो उसके अंदर एक ऊपर की तरफ उठने वाली कैफियत होती है ना, जब आप आग लगाते हैं तो आग नीचे की तरफ तो नहीं जाती, आग तो ऊपर की तरफ जाती है ना, राइट, फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। और मिट्टी के साथ क्या मामला होता है कि जब मिट्टी के अंदर आप पानी को मिला दें तो मिट्टी एक भारी चीज बन जाती है,
और ये भारी चीज जो होती है देखने में भी गंदी लगती है, फायर देखने में कितनी प्यारी लगती है, राइट? ऐसा लगता है जैसे इट्स समथिंग लाइक अ ज्यूल, राइट? अगर छोटा बच्चा बहुत ही बेबी हो, उसको पता ना हो कि फायर जो है वो जला देती है, तो छोटे बेबी के सामने अगर आप किसी फायर को लगाए ना, तो वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, वो चाहेगा उस फायर को पकड़ ले, क्योंकि वो अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन मिट्टी कितनी गंदी लगती है, काली सी और स्याह सी, राइट? और वो हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ जाती है, राइट? इट गोज डाउन, इट डजंट गो अप लाइक फायर, ठीक है? तो ये बड़ी साइंटिफिक उसने लॉजिक दी थी और कहा था कि जी मैं तो फायर से बनाऊं, तो इस वजह से मैं बेहतर हूं इससे, ठीक है? तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, कल माशाल्लाह हमने एक शेर का बयान भी सुना यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने भी यही वर्ड इस्तेमाल किए थे कि ही रिफ्यूज्ड अल्लाह सुब्हान तआला, ही रिफ्यूज्ड टू ओबे अल्लाह सुब्हान तआला बिकॉज इट डिड नॉट मेक सेंस टू हिम। व्हाई? बिकॉज इट डिड नॉट मेक सेंस टू हिम। व्हाई शुड आई वर्शिप और व्हाई शुड आई बाव बिफोर आदम, राइट? मेरे यानी हमारा जो सेंस है वो तो ये कहता है ना, हमारी लॉजिक क्या कहती है कि भाई जो ज्यादा अच्छा हो उसकी तरफ बाव करना चाहिए, जो ज्यादा पावरफुल हो उसकी तरफ सजदा करना चाहिए, राइट? किसी कम पावरफुल या किसी कम क्वालिटीज वाले की तरफ सजदा क्यों करना चाहिए? ये हमारा हमारी लॉजिक ये कहती है, हमारा सेंस ये कहता है। लेकिन अगर हमें मोहब्बत हो किसी से, ठीक है, तो हम उसकी बात को जो है ना वो अपनी लॉजिक के ऊपर नहीं सोचते कि भाई इसने जो मुझे एक हुक्म दिया है ये लॉजिकल हुक्म है कि लॉजिकल हुक्म नहीं है, बल्कि हम उसकी अतात करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से शैतान जो है, उसको जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था ना, अगर इसको अल्लाह से मोहब्बत होती तो ये अल्लाह के हुक्म को लॉजिक के ऊपर मेजर नहीं करता, ठीक है भाई? ये सोचता कि बेशक मुझे समझ में नहीं आ रही बात, अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की विजडम जो है वो मेरी विजडम से ज्यादा बड़ी है, ठीक है? तो अपेरेंटली जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही, यकीनन इसी के अंदर कोई खैर होगी, यकीनन इसी के अंदर कोई भलाई होगी, क्योंकि अल्लाह की विजडम जो है वो सुप्रीम है। ये उसको सोचना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने अपनी लॉजिक को फॉलो किया। इन अदर वर्ड्स, उसने अपने नफ्स को फॉलो किया, उसने किसी शैतान को तो फॉलो नहीं किया ना, बिकॉज उस वक्त तो कोई शैतान होता ही नहीं था, शैतान तो ये खुद बना ना बाद में जाकर के, राइट? तो इसने अपने नफ्स को फॉलो किया, अपने इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट को फॉलो किया, अपनी लॉजिक को फॉलो किया, ठीक है? और इसकी वजह ये बनी थी क्योंकि इसकी जो इबादतें थी वो मोहब्बत वाली इबादतें नहीं थी, ठीक है ना, वो सिर्फ फॉलो करने वाली इबादतें थी, ठीक है? तो अब ये बात जब अगर आपके समझ में आ गई है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर से पूछे, लेकिन अगर ये बात आपके समझ में आ गई है ना, तो अब हम आपको एक और इसके ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है, वो ये है कि हमारा दीन भी जो है ना वो हमसे यही चाहता है। देखें, ये जो हम इबादतें करते हैं ना, ये दो तरह की इबादतें होती हैं। बड़ों को तो हमने कल एक्चुअली एक मजलिस हुई थी, उसमें बड़ों को तो ये बात समझाई है, लेकिन आप लोगों को भी ये बात समझानी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हम जो इबादतें करते हैं वो दो तरह की इबादतें होती हैं, ठीक है? एक कहलाती हैं फराइज, ठीक है ना, फराइज, जिनको कि हम ऑब्लिगेटरी इंग्लिश में कह सकते हैं, ऑब्लिगेटरी इबादतें, फराइज, ओके? दूसरी कौन सी होती हैं जिनको हम कहते हैं नवाफिल, सुपररोगेटरी, बहुत ही मुश्किल वर्ड है ये, पहले भी मैं सोच रहा था भी इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन खैर चलें नवाफिल के ऊपर इस वक्त करते हैं, ठीक है? नवाफिल, नफली इबादतें, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज तो जानने वाले हैं सारे लोग। तो जो नफली इबादतें होती हैं ना, वो नफली इबादतें और फर्ज में क्या फर्क होता है, ठीक है, आप बताएं, किसी को पता है फर्ज में और नफिल में फर्क क्या होता है? अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें, जो कि अभी हम बात कर रहे थे शैतान की इबादतों के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इसी बात को जहन में रखते हुए अगर आप डिफाइन करें व्हाट इज फर्ज एंड व्हाट इज नफिल, किसी को पता है डेफिनेशन? फर्ज क्या हो, क्या होती हैं चीजें, डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे, मैं नाम नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से फराइज होते हैं, बल्कि फर्ज की डेफिनेशन क्या होती है और नफिल की क्या डेफिनेशन होती है।
फर्ज इज ऑब्लिगेटरी, वर्ड तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ऑब्लिगेटरी बताने से क्या होगा, फर्ज कर्ज होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया वैसे आपने, फर्ज कर्ज होता है। लेकिन इस बात से ना समझ में नहीं आएगी बात, ये कर्ज कह देने से बात समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा और आपको डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्ज क्या होता है और नफिल क्या होता है। फर्ज ना करने पर सजा है और नफिल ना करने पर कोई सजा नहीं है। ठीक है, आपने एक यानी जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, ऐसा ही होता है, सजा होती है। लेकिन अभी हम सजा के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात ना करें, बल्कि हम यानी एक और अंदाज भी तो हो सकता है ना इसको डिफाइन करने का, फर्ज इज एन ऑर्डर वेयर एज नफिल इज नॉट एन ऑर्डर। ठीक है ना, दिस विल बी ए मोर अप्रोप्रिएट आंसर टू आवर डिस्कशन। हमारी जो डिस्कशन हो रही है उससे ज्यादा क्लोज आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है कि फर्ज इज एन ऑर्डर वेयर एज नफिल इज नॉट एन ऑर्डर। हुज ऑर्डर? ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। ठीक है ना, व्हाट अल्लाह हैज सेड एंड यू हैव टू डू इज कॉल्ड फर्ज। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, फर्ज पे पकड़ होती है अगर छोड़ दिया जाए, वही मतलब सदा होती है अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारी जो डिस्कशन है उससे मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ये होगा कि फर्ज अल्लाह ताला का हुक्म है और नफिल अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि नफिल जो हम करते हैं ना वो हम अपनी ख्वाहिश से करते हैं, हम अपनी ख्वाहिश से। नफिल इज समथिंग एक्स्ट्रा डेट वी डू, इट इज नॉट ए कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नफिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम अपनी ख्वाहिश से करते हैं, या फर्ज जो कि हम अल्लाह की ख्वाहिश से करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें कमांड करी है ये अल्लाह की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला जो है वो हमें यानी डिमांड करते हैं हमसे कि आपने ये काम करने। ठीक है ना, हाँ, नफिल एक्स्ट्रा इबादत जो मोहब्बत में की जाती है। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। ठीक है, तो फर्ज जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है और नफिल वो होता है जो कि हम अपनी तरफ से करते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। लेकिन जो चीज पहले करने की होती है ज्यादा जरूरी है वो फर्ज है, राइट? नफिल ज्यादा जरूरी नहीं है, फर्ज ज्यादा जरूरी है। नफिल सेकंड नंबर पर आती है, फर्ज फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट सब सबको समझ में आ गया है, अगर नहीं तो पूछें। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शैतान जो है वो क्या चाहता है, शैतान ये चाहता है कि हम अल्लाह की मर्जी को पूरा ना करें बल्कि अपनी मर्जी को पूरा करें। बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड आल्सो, दिस इज एग्जैक्टली वॉट ही ऑल्सो डेड। वो अपनी ख्वाहिश से सजदे करता था, ठीक है ना, अपनी मर्जी से वो इबादतें करता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी से नहीं करता था। इस वजह से अल्लाह ताला का वो आशिक नहीं बन सका, यानी मोहब्बत करने वाला नहीं बन सका। तो उसने भी यही हरकत करी थी ना, यही गलती उसने भी करी थी। तो वो चाहता है कि हम भी यही गलती करें ताकि हम भी जो है ना उसी के तरीके से हम भी फेल हो जाएं, जैसे वो फेल हो गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम भी फेल हो जाएं। तो वो हमें भी किस तरीके से धोखा देता है कि तुम नफली इबादतों को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो, फर्ज को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझो। ठीक है, फर्ज को कम इंपॉर्टेंट समझो, नफिल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो। ओके, अब वो जो है ना ये हमें धोखा देता है कि फर्ज को कम इंपॉर्टेंट समझो और नफिल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो, क्योंकि उसको पता है कि जब ऐसे कोई इंसान काम करता है ना तो फिर इवेंचुअली जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी पूरी नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी मर्जी पूरी कर रहा होता है, इस वजह से वो फायदा उसको नहीं हो रहा होता, बेशक कितनी मेहनतें क्यों ना करता हो। ठीक है, तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो फराइज हैं और उसके बाद नवाफिल की बारी आती है। अब यू ऑल्सो हैव टू नो वॉट द फराइज आर। ठीक है, तो अगर आपसे हम ये सवाल करें कि सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज कौन
कौन सा है?
इसका क्या जवाब होगा? गलत जवाब है, गलत। आप दोनों के, तीनों के जवाब गलत। इबादत? जी, इन्होंने कल का बयान सुना था, राइट? हाँ, जिन्होंने कल का बयान सुना था वो भी सही जवाब दे पा रहे हैं, और वैसे भी माशाल्लाह जो दूसरे बयान भी और से सुनते हैं तो वो भी सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज इज ईमान, बिलीफ। ठीक है, और इट इज नॉट जस्ट बिलीफ इन अल्लाह। वी नो दैट बिलीफ मीन्स बिलीफ इन अल्लाह, बिलीफ इन द बुक्स, बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन द प्रॉफिट्स, बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट एंड बिलीव इन डेस्टिनी। डेस्टिनी के बारे में भी हमने तफसील से बात करी है ना आपकी क्लास के अंदर ही। आमन तो बिल्ला ही व मलाइकते ही व कुतुब ही व रसुल ही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैर ही व शर ही। ठीक है, वल बास बाद मौत। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर बिलीफ। ठीक है, अच्छा, इन ये कितनी चीजें हमने आपके सामने पढ़ी हैं? 7 चीजें पढ़ी हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम वाज द लास्ट प्रॉफिट? इसके ऊपर बिलीफ की जरूरत नहीं है? खत्मे नबुवत, क्या इसके ऊपर बिलीफ की जरूरत नहीं है? इसके ऊपर भी बिलीफ की, ये भी शर्त है ईमान के लिए। अगर कोई सारी बातों पर ईमान रखता हो, आखिरत पर भी, तकदीर पर भी, और रसूलों और किताबों पर भी, लेकिन कहता हो कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, विल ही बी अ मुस्लिम? विल ही स्टिल बी अ मुस्लिम? राइट, नो, ही विल नॉट बी अ मुस्लिम। ठीक है, तो इस वजह से ये बात जो है ना वो हमें कहनी कहनी होती है कि ईमान एंड अकीदा, ईमान एंड अकीदा, दीज टू आर द फर्स्ट फर्ज। पहला फर्ज क्या है? कि आप ईमान लेकर के आए और आपका अकीदा ठीक हो। बिकॉज ये जो 7 चीजें हैं इसको आप ईमान तो कह देते हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल्स होती है ना, डिटेल्स जो हैं वो अकीदा कहलाती हैं। ठीक है, और अकीदा के अंदर फिर खत्म नबूवत भी आ जाती है। ठीक है, कुरान के अंदर जो जो बातें लिखी हैं उन उन बातों के ऊपर ईमान लाना, इन सब चीजों को कलेक्टिवली अकीदा कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वी विल यूज बोथ दीज टर्म्स, ईमान एंड अकीदा, बोथ ऑफ देम आर द फर्स्ट फर्ज। पहला फर्ज क्या है? नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, जकात नहीं है, बल्कि ईमान एंड अकीदा, यह पहला फर्ज है। ठीक है, अकीदा और ईमान सही होगा तब फिर हम सेकंड फर्ज के ऊपर आएंगे। ठीक है, सेकंड फर्ज क्या है? नमाज पढ़ना। ठीक है, तीसरा फर्ज क्या है? जकात देना। चौथा फर्ज क्या है? रोजे रखना। पांचवा फर्ज क्या है? हज करना। ठीक है, और छठा फर्ज क्या है? छठा फर्ज भी बता दें आप लोग, छठा फर्ज क्या है? जी, ये तो 5 फर्ज हो गया ना, ईमान एंड अकीदा, फर्ज, नमाज, हज, जकात, रोजा, हज, एंड व्हाट इज द सिक्स्थ वन? जी, गुनाहों से बचना। ठीक है, गुनाहों से बचना, जो गुनाहे कबीरा कहलाते हैं ना, उन सब से बचना, ये 6th फर्ज है। ठीक है, तो ये हैं फराइज। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज क्या है? वो ईमान एंड अकीदा है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, नाउ आई एम कमिंग टू माय मेन पॉइंट, जो कि मैं आप लोगों को आज समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, वो ये है कि शैतान जो है ना वो जिस तरह से ऑर्डर रिवर्स करके हमें धोखा देता है ना, हमें फेल करता है ऑर्डर रिवर्स करके, कि भाई नफिल को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है और फर्ज को जो है वो कम इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक है, उसी तरीके से वो जो है ना, ये जो ऑर्डर है ना, फर्स्ट फर्ज कौन सा है और सेकंड फर्ज कौन सा है, इस ऑर्डर को भी चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जो ईमान और अकीदा है इसकी इंपॉर्टेंस को हमारी निगाहों में कम करने की कोशिश करता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमारी निगाहों में कम करने की कोशिश करता है, और बाकी फराइज को इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने की, हज करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। राइट,
زکات دینے کو اور روزے رکھنے کو اور نماز پڑھنے کو زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتا ہے, اور ایمان اور عقیدہ جو کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو کم امپورٹنٹ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کم امپورٹنٹ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ایک بڑی ایگزامپل جو آج کل جو کہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے I'll be very straight, ٹھیک ہے, میں ادھر ادھر کی آپ لوگوں کی ویسے بھی یوتھ بچوں کی کلاس ہے تو I'll not mince a lot of words, I'll go straight to the point. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کو تو سب کو ہی پتا ہے کہ I'm in the United States right now, ٹھیک ہے, امیرکا میں ہوں اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مجھے کافی ایکسپوجر مل رہا ہے مسلم یوتھ کا, اسلامک سینٹرز کا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے چونکہ آج کل یہ باتیں میرے سامنے بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں تو دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹو اے لاٹ آف پیپل ایز ویل. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم باقی جو لوگ ہیں پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں اور سعودی عرب میں ہیں, ان کے ساتھ بھی باتیں چلتی رہتی ہیں, واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیشن ہم سب کی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں سے بات کر کے جو ایک بڑی بات سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا کے حالات, آپ میں سے اکثر لوگوں کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان سے مسلمان بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا کے جو حالات چل رہے ہیں ان سے انڈین مسلمز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر اسلام کو پریکٹس کرنے کی بڑی آزادی تھی اب تک. ٹھیک ہے نا, انڈیا واز اور اسٹل از مے بی آن پیپر اٹ اسٹل از اے سیکولر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو دین کے اوپر عمل کرنا مشکل نہیں تھا انڈیا کے اندر, مدرسے بھی بہت سارے موجود ہیں اور سب کچھ ہوتا تھا, آسانی کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, انڈیا کے اندر اعمال کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی اپوزیشن ہو رہی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کر رہے ہیں مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ امیرکا کے اندر بالکل الٹا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, امیرکا کے اندر کیا معاملہ ہے اس وقت؟ امیرکا کے اندر پچھلے تقریباً 10-12 سال سے حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی بہت آسان تھا, پھر بیچ میں تھوڑی مشکلات آئی تھی, لیکن اب جو ہے وہ پھر سے بہت آسان ہو گیا ہے. عمل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, اسلامک سینٹرز کے اندر جانا, مسجدوں کے اندر جانا, حتیٰ کہ داڑھی جس کو کہ پہلے بہت مشکل سمجھا جاتا تھا داڑھی رکھنا یہاں پر, اب داڑھی رکھنا انتہائی آسان ہو گیا یہاں پر. کین یو امیجن دس, داڑھی رکھنا از ناٹ این ایشو ایٹ آل. وائی از دیٹ سو؟ کین سم ون ٹیل می, کسی کو پتا ہے امریکہ میں داڑھی رکھنا آسان کیسے ہو گیا ہے؟ بڑے ایک انٹرسٹنگ سا پوائنٹ, بس امریکہ میں داڑھی رکھنا آسان کیوں ہو گیا ہے؟ جی, بیکاز اٹ از دا نیو ٹرینڈ. نو, اٹس ناٹ بیکاز آف فریڈم. فریڈم تو پہلے بھی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ آن پیپر فریڈم تو پہلے بھی تھی, لیکن پہلے داڑھی رکھنا مشکل تھا, اب داڑھی رکھنا کیوں آسان ہو گیا؟ بیکاز اٹ ہیز بین میڈ فیشن. واٹ کائنڈ آف داڑھی ہیز بین میڈ ان ٹو فیشن؟ اٹس ناٹ دی جوئش داڑھی, اٹس ناٹ دا سکھ داڑھی, اٹس دا شریعہ داڑھی. شریعت کی جو داڑھی ہوتی ہے نا, سنت داڑھی جو ہوتی ہے, وہ فیشن میں آ گئی ہے. نان مسلم سنت والی داڑھی رکھتے ہیں, بالکل سنت والی داڑھی, رائٹ, نان مسلم رکھتے ہیں, فیشن میں آ گئی ہے. تو ایون داڑھی رکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور باقی اعمال جو ہیں وہ تو وہ بھی آسان ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایوری ون از ویری اکوموڈیٹنگ. ٹھیک ہے نا, ایکسپٹ فار اے ویری فیو پیپل, ایوری ون ایلس از اکوموڈیٹنگ. ٹھیک ہے نا, سارے لوگ جو ہے وہ بہت مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی انکریج کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو ٹھیک ہے مل جل کر کے ہمیں چلنا چاہیے. تو امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ اعمال کرنے انتہائی آسان ہو گئے. ٹھیک ہے, چاہے جس قسم کے بھی اعمال ہوں, نفل کے اعمال, نفلی اعمال ہوں یا فرض والے اعمال ہوں, بڑی بڑی آپ جو ہے وہ عید کی پریئر کانگریگیشن جو ہیں وہ ہیوج کانگریگیشن, ٹھیک ہے, وہ آپ عید کے کر سکتے ہیں, کہیں بھی چاہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اعمال کرنے آسان ہو گئے, لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان اعمال کے باوجود جو عقیدہ ہے نا, ایمان اینڈ عقیدہ, اس کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایمان اور عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح سے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے یہاں پر؟ کوئی بتائے گا اس کا؟ کسی کو پتا ہے اس کا ریزن کہ امریکہ کے اندر ایمان اور عقیدہ کیوں مشکل ہے, حالانکہ اعمال کرنے آسان ہے؟ وائی از دیٹ سو؟ کسی کو پتا ہے؟ امریکہ کے اندر اعمال کرنے اتنے آسان ہو گئے ہیں تو بھائی ایمان بھی آسان ہو جانا چاہیے تھا, عقیدہ بھی آسان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے, اعمال آسان ہو گئے. ٹھیک ہے, کیسے؟ کین سمون ہیز اینی آئیڈیا؟ ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے کہ یہ جو اعمال کرنے آسان ہو گئے ہیں نا, علماء حق کی کمی نہیں, علماء حق بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, اس کی بھی کوئی اتنی خاص کمی نہیں ہے, بہت ہیں علماء حق. ٹھیک ہے نا, اور آج کل جو ہے چونکہ یہ جو کمیونیکیشن اتنی آسان ہے نا, واٹس ایپ اینڈ ایوری تھنگ از سو ایزی, اس وجہ سے اگر علماء حق موجود نہ بھی ہونا تو بھی کام چل جاتا ہے, بیکاز آپ آسانی سے علماء حق کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر سوال جواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فون پہ بات کر سکتے ہیں. تو اگر علماء حق آپ کی کمیونٹی میں نہ بھی ہو پھر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آپ آسانی سے ان سے فون پہ اور واٹس ایپ کے اوپر بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں ان سے ساری باتیں, اور پوچھ کر کے پھر آپ عمل کر سکتے ہیں, عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن عقیدہ اور ایمان کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ آؤٹورڈ انوائرمنٹ. ہاں, آؤٹورڈ انوائرمنٹ, لیکن کیا آؤٹورڈ انوائرمنٹ؟ ہاں, ایک بہت بڑا ریزن تو اس کا پرانا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آؤٹورڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہاں پر بہت ہی زیادہ گناہوں والی انوائرمنٹ ہوتی ہے. بھائی نان مسلم جو ہیں وہ گناہ سے تو پیچھے نہیں ہٹے ہیں نا, یہ تو نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا ہے تو اب نان مسلمز نے گناہ کرنے چھوڑ دیے, نان مسلمز نے جو ہے وہ اپنی ڈریسنگ جو ہے وہ اب سنت والی کرنی شروع کر دی ہے. ایسا تو نہیں ہوا ہے نا, ان کی تو ڈریسنگز پہلے سے اور بھی زیادہ بری ہوتی چلی جا رہی ہیں, رائٹ, یعنی اور بھی زیادہ, اور پتہ نہیں کتنا, اور یعنی اب کیا اور مزید کیا بری کریں گے, لیکن یس دے آر گیٹنگ ایون ورس, رائٹ. اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ اس گناہوں کی انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں. بے شک آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, فجر میں بھی جا رہے ہیں مسجد, عشاء میں بھی جا رہے ہیں مسجد, لیکن کب تک مسجد میں رہیں گے؟ مسجد سے باہر تو آنا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا چلے, کوئی اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ تو پاکستان میں بھی بری ہے, یہ تو انڈیا میں بھی بری ہے, انڈیا میں بھی جو ہے وہ لوگ بہت برے برے ڈریسز پہنتے ہیں, اور انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ بہت یعنی باہر جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ ان امیرکا؟ ٹھیک ہے, نو, دیر از اے بگ ڈفرنس. وہ کیا ہے کہ جو انوائرمنٹ جو ہے یہاں پر, جو گناہ والی انوائرمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, تو دیر از ون آف دا پرابلمس. دی ادر بگ پرابلم از کہ امیرکا کے اندر جو یہ جو سپورٹیو انوائرمنٹ بنا ہے نا مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے, کہ جی مسلمانوں کو عمل کرنے کی آزادی ہو گئی ہے, بہت آزادی ہو گئی ہے, یہ جو سپورٹیو انوائرمنٹ ہے, دس ہیز کم ود اے کاسٹ, دس ہیز کم ود اے پرائز ٹیگ, کاسٹ. ٹھیک ہے نا, وہ کاسٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کاسٹ یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ریلیجس لائف سٹائل میں, ٹھیک ہے نا, آپ کا جو ریلیجس لائف سٹائل ہے, آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں, رمضان المبارک میں اتنا کچھ آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے نا ہمارا, ٹھیک ہے نا, حج کرنے کے لیے عید کی نمازیں ہوتی ہیں, یہ مسلمانوں کا لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے, وین ادر پیپل سپورٹ یور لائف سٹائل, واٹ از ڈیمانڈیڈ فرام یو, اور واٹ از انٹرنل, لوگوں کے اندر ایک انٹرنل پریشر پیدا ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ وی شوڈ آلسو بی سپورٹیو آف دیئر لائف سٹائلز, آف دیئر بلیفز, رائٹ, آف دیئر پریفرنسز, آف دیئر چوائسز, وی آلسو ہیو ٹو بی سپورٹیو آف دیٹ. دیٹ از واٹ از کالڈ اکوموڈیٹنگ, میوچل اکوموڈیشن. ٹھیک ہے نا, اب بھی میوچل اکوموڈیشن جو ہوتی ہے یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے एज लॉन्ग एज यू डोंट हर्ट एनीवन, ठीक है ना, यू आर सिंपैथेटिक टू पीपल इन द सेंस के भाई हाँ भाई वो काफिर हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, डिसबिलीवर्स हैं, तो वो गलत काम कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं जिस लाइफस्टाइल को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। अब उस लाइफस्टाइल की तफसीर में मैं क्या जाऊं, राइट, वो भी किसी और वक्त में किसी और तरीके से आपके सामने कोशिश करेंगे उनकी लाइफस्टाइल की थोड़ी तफसील में जाने की, लेकिन अभी आपको इतना तो पता है ना कि जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो इंतहाई इनडिसेंट लाइफस्टाइल होता है, इंतहाई इनडिसेंट लाइफस्टाइल, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल तक रहें कि हाँ जो उनका लाइफस्टाइल है वो गुनाह है, राइट, वो बेचारे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको नहीं पता कि जी क्या गलत है क्या सही है, तो उनका जो यानी हमें उनको जो है वो अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए, ठीक है ना, दावत दावत और तबलीग का काम करना चाहिए मोहब्बत और प्यार के साथ, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो गुनाह है, वो गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, और इसी हालत में अगर मरेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, ठीक है, यहां तक तो ठीक है मामला। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ गए, इससे आगे बढ़ गए, आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो उनका लाइफस्टाइल है वो गुनाह नहीं है, वो भी सही है, वो भी ठीक है, ठीक है ना, उसके साथ इश्यूज जो है वो आपके जहन के अंदर कम होने शुरू हो गए, ठीक है, उसकी जो नफरत थी जो आपके घर जो दिल के अंदर एक डिसगस्टिंग फीलिंग होनी चाहिए थी उस प्रोमिस्कुअस और इनडिसेंट लाइफस्टाइल के बारे में, वो नफरत जो है वो आपके दिल में कम होनी शुरू हो गई। तो इससे क्या होगा, इससे आपका अपना ईमान खराब होना शुरू हो जाएगा, अपना अकीदा खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत ओपनली जो है वो अपने अमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे अमाल जो है वो आप बहुत लिबर्टी के साथ कर रहे हैं, लेकिन वंस यू स्टार्ट बीइंग अकोमोडेटिंग इन योर हार्ट टूवर्ड्स देयर लाइफस्टाइल्स, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर बिलीफ सिस्टम, आपका अपना ईमान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपकी सेकेंड यानी जो सेकेंड लेवल का फर्ज है, थर्ड लेवल का फर्ज है, फोर्थ लेवल का फर्ज है, उसके ऊपर तो आप बड़े अच्छे से अमल कर रहे हैं, बल्कि आप नफलों के ऊपर भी बड़े अच्छे से अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक सेंटर्स के अंदर आप जो है वो क़यामुल लैल बड़ी माशाल्लाह रातों को जो है क़यामुल लैल होता है, ठीक है ना, और जो है वो बड़ी जो है वो सोशल यानी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिम होता है, लोग जो है जाकर के उसके अंदर माशाल्लाह मस्जिद के अंदर जो जिम होता है उसमें बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और उसके अलावा दावत दावत दावा की भी बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, सारे काम आपके चल रहे हैं, लेकिन जो आपका ईमान और अकीदा है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, वो जो है आपका लेस इंपॉर्टेंट बनना शुरू हो गया आपके जहन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट एक्चुअली शैतान इज प्लेइंग हिज अल्टीमेट ट्रिक अपॉन यू, शैतान इज प्लेइंग हिज अल्टीमेट ट्रिक अपॉन यू, कि वो धोखे में रख करके आपको नॉन मुस्लिम बना रहा है, आपको काफिर बना रहा है, लेकिन धोखे के साथ, राइट, धोखे के साथ, बिकॉज आप ये समझ रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे मुसलमान बन रहे हैं क्योंकि आपके अमाल पूरे हो रहे हैं, अमाल पूरे हो रहे हैं, अच्छा, सो मच सो, यानी अल्लाह रहम करे, ये इट्स नॉट ओके, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज ऑल्सो हैपनिंग व्हेन यू गो टू द फजर प्रेयर इन द मस्जिद, not just men and youth are coming to the masjid, even women are coming to the masjid fajr ki namaz padhne ke liye, auratein masjid aati hain, isha ki namaz mein to pehle bhi aati thi, fajr ki namaz mein bhi masjid aati hain, theek hai, to kya ye galat hai masjid aana fajr ki namaz mein, nabi sallallahu alaihi wasallam ke zamane mein aati thi, sahaba ke zamane mein जो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और जो बड़े सहाबा थे उन्होंने औरतों को मना कर दिया था मस्जिद में आने से, ठीक है, उसकी रीजंस थी। बहरहाल ये इस वक्त हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि फजर में औरतों को आना चाहिए कि फजर में औरतों को नहीं आना चाहिए, ये हमारी डिस्कशन अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज हाउ मच फोकस इज ऑन अमल, ठीक है, दिस इज हाउ मच फोकस इज देयर ऑन अमल। ठीक है, लेकिन अकोमोडेटिंग टू द अदर लाइफ स्टाइल, इससे आपका ईमान खराब होता है, ईमान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, अकीदा कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो ज्यादा अहम क्या चीज है, ईमान इंपॉर्टेंट है, आमाल जो है वो उसके बाद आते हैं। हाउएवर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर इसका बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स। क्या हो रहा है इंडिया में, जरा इंडियन मुस्लिम्स जरा आप बताएं, अमेरिका की पिक्चर आपके सामने पेश करी है ना, इसी पिक्चर को रिवर्स करके इंडिया के बारे में बताएं कि इंडिया में क्या हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट वर्बलाइज इट। जी पाकिस्तानी बच्चे भी बोल सकते हैं वैसे, लेकिन इंडियन बच्चे बोलने ज्यादा खुशी होगी। इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त, कोई नहीं लिख रहा, वो रेज हैंड वाला आप लोग यूज नहीं कर रहे। सही दीन पर चलना मुश्किल कर रहे हैं। नहीं, कोई और जवाब दे, नहीं देने जवाब, डर लग रहा है हुकूमत से। आमाल से भी रोक रहे हैं, और किससे रोक रहे हैं, ईमान से भी रोक रहे हैं। अमेरिका की बात समझ में आई, अमेरिका में क्या हो रहा है, आमाल की आजादी है लेकिन ईमान जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इसका रिवर्स, इसका ऑपोजिट। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट ये है कि इंडिया के अंदर आमाल की आजादी खत्म हो रही है, आमाल की आजादी कम हो रही है, लेकिन ईमान, ईमान जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ईमान इज गेटिंग स्ट्रांगर। ठीक है ना, ईमान ज्यादा मजबूत हो रहा है, इसलिए कि जब नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ऑपोजिशन होती है ना मुसलमानों की, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से जब मुसलमानों की ऑपोजिशन होती है तो उससे ईमान मजबूत होता है मुसलमानों का, बिकॉज मुसलमान जो होते हैं वो अपने आप को मुस्लिम यानी आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू नॉट जस्ट ईच अदर बट ऑल्सो टू देयर उलमा। अपने जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं ना, जो कि उलमा होते हैं, उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वरीड कि जी क्या बनेगा उनका। ठीक है, तो इस जो ये जो एटीट्यूड इस वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है ना, ये जो एटीट्यूड है ये आमाल की पाबंदी वाला एटीट्यूड है, आमाल पर पाबंदियां हैं, ईमान पर वो पाबंदी नहीं लगा सकते, अकीदे पर वो पाबंदी नहीं लगा सकते। वाय क्यों नहीं लगा सकते पाबंदी, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं अकीदे पर रोक टोक है, नहीं अकीदे पर कोई रोक टोक नहीं है, वो कर ही नहीं सकते अकीदे पर रोक टोक। क्यों नहीं कर सकते अकीदे पर रोक टोक, ईमान पर रोक टोक क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता कोई? जी बिकॉज ये दिल का मामला है, दिल का मामला है, ईमान तो दिल में होता है इंसान के, राइट? और ये जो अकीदे की बातें होती हैं ये इंसान के जहन में होती हैं, माइंड में होती हैं। कोई आपके माइंड को तो चेंज नहीं कर सकता ना, कोई आपके दिल को चेंज नहीं कर सकता, वो आपको अमल करने से रोक सकता है, जाहिरी अपेरेंट अमल करने से रोक सकता है, वो आपके दिल को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितनी ही ज्यादा ऑपोजिशन क्यों ना करे, वो ईमान से महरूम नहीं कर सकती आपको। ठीक है, वो अमल से महरूम कर सकती है, ईमान से महरूम नहीं कर सकती। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, ईमान होता है, अमल नहीं होता, याद रखें इस बात को, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ईमान है, अमल नहीं है। ठीक है, तो कोई इंसान अगर अमल कर रहा हो लेकिन उसका ईमान खराब हो रहा हो, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, बिकॉज ईमान अगर उसका चला गया तो कयामत में उसको इन आमाल का कोई फायदा नहीं होगा, कयामत के दिन इन आमाल का कोई फायदा नहीं होगा, राइट, अगर ईमान चला गया। लेकिन एक इंसान का ईमान बाकी है लेकिन अमल उसने नहीं किए, तो क्या होगा कयामत के दिन? ईमान उसका पक्का है, अमल नहीं कर पा रहा था, तो कयामत के दिन क्या होगा जी? ये भी बता दें। कौन मजबूत हो गए? जी, अगर किसी का ईमान सलामत है लेकिन अमल नहीं कर पा रहा था, राइट, चाहता था अमल करना लेकिन गवर्नमेंट नहीं करने दे रही थी, राइट, तो उसके साथ कयामत के दिन क्या होगा? भाई वो तो चाहता था ना अमल करना लेकिन गवर्नमेंट करना नहीं दे रही थी, तो उसके साथ ये होगा, मगफिरत हो जाएगी, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, बिकॉज अल्लाह ताला को मालूम है कि इसने अमल जो है वो गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से नहीं किए, राइट, लेकिन ईमान इसका मेरे ऊपर पक्का था, ही विल बी फॉरगिवन, ही विल बी फॉरगिवन, एग्जैक्टली। समझ में आई बात? सबको समझ में आई? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबका नाम ले ले करके मैं मुझे अलग अलग पूछना चाहिए कि आपके समझ में आई कि नहीं, आपके समझ में आई कि नहीं, आपके समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे एक दोस्त हैं इंडिया के, कल उन्होंने जो है ना वो एक वीडियो लगा दी अपने व्हाट्सएप के ऊपर कि जी अमरीका के अंदर मुसलमानों को इतनी आज़ादी है कि वहां पर जो है लार्जेस्ट एवर ईद कॉन्ग्रीगेशन हुआ, ठीक है ना। ये जो एहसन मोहसिन साहब है ना, आप अपने म्यूट कर लीजिए माइक को, ठीक है, या यहाँ पे कौन है, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने एक वीडियो लगाई अपने व्हाट्सएप के ऊपर कि अमेरिका के अंदर ईद कॉन्ग्रीगेशन जो है ना वो इतनी बड़ी जो है वो इतने बड़े स्टेडियम के अंदर हुई, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, हम भी बड़े खुश हुए, होनी चाहिए कॉन्ग्रीगेशन बड़ी सी ईद की, ठीक है। लेकिन उस ईद कॉन्ग्रीगेशन में हो क्या रहा था, मर्द जिधर खड़े हुए थे ना, मर्दों के बराबर में औरतें भी खड़ी हुई थी, राइट, वुमेन वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द मेन, ठीक है ना। और मुसलमान बड़े खुश हैं जी अमेरिका के अंदर इतना बड़ा ईद कॉन्ग्रीगेशन हो गया, ठीक है ना। तो अब ये यानी क्या ये सुन्नत तरीका है नमाज पढ़ने का? है क्या औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा होना होता है या औरतों को मर्दों के पीछे खड़ा होना होता है, ठीक है ना। अब अमल भी सुन्नत के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि औरतें पीछे खड़ी होती हैं हमारे दीन के अंदर, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज सिखाई है उसमें औरतें किधर खड़ी होती हैं? पीछे खड़ी होती हैं, यहां पर बराबर में खड़ी हो रही हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट जस्ट एन अमल का प्रॉब्लम, ये अमल भी गलत है, सुन्नत के खिलाफ अमल है, लेकिन इट ऑल्सो टेल्स कि दिस शोज कि वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि नमाज का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनके दिल के अंदर इसकी अहमियत भी तो कम हो गई ना कि हमने सुन्नत पे अमल करना है, सुन्नत इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, सुन्नत इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, यानी अमाल के अंदर सुन्नत तरीका इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी देन हैविंग अ बिग कॉन्ग्रीगेशन, राइट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू हैव अ बिग कॉन्ग्रीगेशन दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द सिटी अथॉरिटीज और फॉलोइंग द सुन्नत तरीका इन ईद, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंस शैतान ने दिल में कम कर दी, राइट, बराबर बराबर खड़ा कर दिया, तो ये क्या प्रॉब्लम हुई? ये अकीदे की प्रॉब्लम कहलाएगी, अकीदे की प्रॉब्लम कहलाएगी कि जी जो सहाबा का तरीका था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, उसके खिलाफ जाकर के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सारी दुनिया के अंदर क्या मशहूर हो रहा है जी? अमरीका के अंदर कितनी आजादी है जी, है ना, अमेरिका में जी कितना मुसलमान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बिकॉज उस ईद की नमाज के अंदर शायद वो जो स्टेट के गवर्नमेंट गवर्नर साहब थे या जो सिटी के मेयर साहब थे वो भी आए हुए थे नॉन मुस्लिम, और बड़े खुशी से मुसलमानों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो इंडियन मुस्लिम साहब जो हैं, जो इंडियन मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने इस वीडियो को लगा के क्या क्या कैप्शन लगाया था कि देखो हमारी हुकूमत जो है ना वो कितना खिलाफ जा रही है और देखो अमरीका में कितनी आज़ादी है, राइट, अमेरिका में आजादी है और हम जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर जो है वो यानी आजादी नहीं है, इंडिया के अंदर आजादियां खत्म हो रही हैं। तो मैंने फिर उनको समझाया कि ऐसा ना करें आप, ठीक है ना, आप ऐसा ना करें, आपको नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये जो हमारा दीन है। अच्छा, उनको भी जब मुझे समझाया ना कि जी ये आपने देखा नहीं कि नमाज जो जिसको क्या बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो इस नमाज के अंदर औरतें मर्दों के बराबर में खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने जवाब दिया कि ये तो वहां का कल्चर है, राइट, ये तो वहां का कल्चर है, ये किस किस्म का जवाब है, क्या मतलब है यहाँ का कल्चर है? सारे एक तो एक तो उसमें कोई अमरीकी मुसलमान भी नहीं थे, अमरीकी वाइट्स एंड ब्लैक मुसलमान नहीं थे, सारे पाकिस्तानी थे, राइट, इंडियन थे, इंडियन मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, तो इंडियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कल्चर है कि औरतें जो है नमाज के अंदर बराबर बराबर में खड़ी हों, ये कल्चर है इंडियन में पाकिस्तानी मुसलमानों का, राइट, यानी एक बेवकूफ़ी का आंसर था इसके लिए सर, ठीक है? तो कल्चर वल्चर कोई नहीं है, मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना वो बेहयाई के चूंकि कल्चर है तो इस वजह से मुसलमान जो है वो अपनी ईद की नमाज में भी बेहयाई कर सकते हैं, राइट, ये उनका गालबन मकसद था कहने का कि चूंकि बेहयाई का कल्चर है हर तरफ, इंडिसेंसी का कल्चर है, तो इस वजह से ईद की नमाज के अंदर भी इंडिसेंसी इज पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट? तो उनको जवाब फिर ये समझाया कि नहीं, इस्लाम इज नॉट कल्चर, ठीक है ना, इस्लाम इज नॉट कल्चर, इस्लाम तो वो है जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है हमें, अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत के जरिए से जो सिखाया है वो इस्लाम है, इट इज नॉट कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर इस्लाम नहीं है, इंडियन कल्चर इस्लाम नहीं है, अरब कल्चर इस्लाम नहीं है, अमेरिकन कल्चर इस्लाम नहीं है, ठीक है ना, इस्लाम तो सुन्नत कल्चर कहलाता है, सुन्नत कल्चर इस्लाम है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना वो आज़ादी जो है वो इंडियन मुस्लिम्स को इस वक्त बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस बात को याद रखें, ईमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और आमाल जो है अल्लाह ताला माफ कर देंगे क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि आप गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है? खैर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अब इस बहाने से आमाल करना छोड़ दे कि नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले मार देंगे, हिंदू मार देंगे, भाई ऐसा भी नहीं है, इतना भी बुरा मामला नहीं है, ठीक है ना, वो हर कोई डंडा लेके खड़ा हुआ नहीं है मुसलमानों को कि ये नमाज ना पढ़ो, वो भी एक्चुअली शैतानी जो है ना वो हमें खामखा डराता ज्यादा है कि ऐसा हो जाएगा नमाज पढ़ोगे तो ये हो जाएगा और पर्दा करोगे तो जो है वो मार देंगे तुम्हें, ये भी शैतान की तरफ से होता है, इतना भी बुरा हाल अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि ईमान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईमान के बाद अमाल की बारी आती है और अमाल फर्ज के जो अमाल होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नफिल अमाल से, ठीक है? तो नफिलों की बारी बिल्कुल आखिर में आती है, सबसे पहले ईमान और अकीदा, फिर उसके बाद जो बाकी फराइज हैं, फिर उसके बाद नफलें, ठीक है? लेकिन ये बात भी याद रखें, जैसा कि पिछली क्लास के क्विज के अंदर दूसरा सवाल क्या था कि जो बनी आदम हैं उन्होंने क्या दो काम करने हैं इस दुनिया के अंदर, वो दो काम करने हैं, एक तो उन्होंने इबादतें करनी है अल्लाह को राजी करने के लिए, दूसरा उन्होंने अपने आप को शैतान से बचाना भी है, ठीक है, शैतान से बचाना भी है। तो इस वजह से ये जो हमने ऑर्डर आपके सामने रखा है ना, नंबर वन इज ईमान एंड अकीदा, नंबर टू इज द रेस्ट ऑफ द फराइज, ठीक है, नंबर थ्री इज नवाफिल, ओके। तो अब शैतान से बचाना भी तो है ना अपने आप को, तो इस वजह से यह भी याद रखना है कि शैतान इस ऑर्डर को रिवर्स करने की कोशिश करता है, नफलों को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है फर्ज के मुकाबले में, ठीक है, गुनाहों से बचना वो कहता है कोई बात नहीं गुनाह करते रहो, ठीक है ना, और गुनाहों के ऊपर तुम इसरार भी करते रहो लेकिन साथ साथ नफलें खूब पढ़ना, ठीक है ना, और तुम्हें जो है वो रोजे रखने चाहिए, नफली रोजे रखने चाहिए, 13, 14 और 15 के रोजे रखने चाहिए, और तुम्हें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, और तुम्हें जो है वो वजीफे पढ़ने चाहिए, और तुम्हें जो है वो ये सारे जो है वो नफली अमाल करने चाहिए, ठीक है, लेकिन गुनाह से बचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना, झूठ बोलने से बचने की कोई जरूरत नहीं है, बेपर्दगी से बचने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, ये सारे काम तुम करते रहो अपने, ठीक है। तो शैतान इस तरीके से ना रिवर्स करता है ऑर्डर को, ठीक है, और उसी तरीके से वो मजीद क्या रिवर्स करता है, वो कहता है कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द अमाल, ठीक है ना, अकीदे के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अकीदा जो है वो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज होता रहे उसकी परवाह ना करो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जब अकीदे की सिग्निफिकेंस कम हो जाती है हमारे दिल के अंदर तो फिर हम आमाल के ऊपर तो खूब जो है वो पाबंदी कर रहे होते हैं, लेकिन अकीदे के मामले में ना फिर, और ये आज के दौर के अंदर किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि हम कहते हैं कि हाँ हम तो मुसलमान हैं और हम तो यानी सारी चीज़ें पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग बिलीव नहीं करते हैं ना तो वो भी ठीक है, राइट, वो भी जो लोग जो है वो यानी इंडिसेंट लाइफस्टाइल के ऊपर बिलीव करते हैं, जो लोग जो है वो शिर्क पे बिलीव करते हैं, जो लोग जो है वो दूसरी चीजों पर बिलीव करते हैं वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। ये जो सोचना है कि वो भी ठीक है हम भी ठीक है, ये भी कुफर है। क्या है ये? कुफर। ठीक है कि वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये भी कुफर है। ओके, तो ऐसा करने से इंसान काफिर हो जाता है। जब तक आप उस लाइफस्टाइल को डिनाई ना करें, ठीक है, और उसको कुरान के खिलाफ ना कहें, ठीक है, उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करना शुरू हो जाएं कि वो ठीक है, तो फिर इंसान काफिर हो जाता है। और काफिर हो जाने के बाद फिर आप बेशक नमाजें पढ़ते रहें सारी नमाजें, ठीक है ना, रोजे रखते हैं ना साल के अंदर, आप फर्ज रोजे भी रखें, नफिल रोजे भी रखें, जकात भी देते रहें, हज भी करके आ जाएं, राइट, और जो है वो पूरे दुनिया के अंदर जो मुसलमान बेचारे मजलूम हैं उन मुसलमानों के लिए आप प्रोटेस्ट भी करते रहें जा करके, राइट, कश्मीरी मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट करें, कभी कभी जा करके आप फलस्तीनी मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट करें, करते रहें सब कुछ, बेशक करते रहें, लेकिन चूंकि अकीदे के एतबार से आप काफिर हो चुके हैं, ठीक है, अब इन अमाल का आपको कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट टू हैव अ मुस्लिम नेम एंड बीइंग बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली डज नॉट हेल्प, ठीक है ना, उसके लिए ईमान और अकीदा प्रिजर्व होना इज द शर्त, प्रीरिक्विजिट है वो, ठीक है। सवाल, टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन सवालों के लिए हम आपका वेट करेंगे। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? आज की जो डिस्कशन थी वो सारी की सारी इसी पॉइंट पर थी कि शैतान जो है वो इबादतें करता था, लेकिन वो इबादतें अपने आप को खुश करने के लिए करता था, ठीक है, अल्लाह की अतात में नहीं करता था, तो इस वजह से वो अल्लाह ताला का आशिक नहीं बन सका, ठीक है, तो जब आशिक नहीं बन सका तो अल्लाह ताला ने फिर उसको हुक्म दिया कि उसजुदु लि आदम, तो उसके ऊपर वो अपनी लॉजिक पेश करने लगा, ठीक है ना, साइंटिफिक लॉजिक पेश करने लगा कि व्हाई शुड आई डू इट व्हेन इट डजंट मेक सेंस टू मी, व्हेन इट डजंट मेक सेंस टू मी, उसको ये करना चाहिए था कि वो अल्लाह ताला की विजडम के ऊपर एतमाद करता और अल्लाह ताला की बात को मान लेता, ठीक है। तो अब वो चूंकि उसने इसी गलती की वजह से वो अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया हेवन से, ठीक है, जन्नत में वो नहीं था। किसी बच्चे ने जवाब ये भी लिखा था कि शैतान को जन्नत से निकलना पड़ा, नहीं, जन्नत में तो वो था ही नहीं, हेवन्स के अंदर रहता था, हेवन्स इज नॉट जन्नत, ठीक है ना, सातों आसमान अलग चीज है और जन्नत अलग जगह है, ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला ने आसमानों से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो अब चूंकि उसने यही गलती करी थी तो वो अब जो आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं ना, जिससे कि उनको दुश्मनी है, उसको दुश्मनी है, तो अब वो यही करता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के अंदर भी जो है वो इसी तरीके से ऑर्डर को चेंज कर देता है ताकि वो भी नफलों के अंदर लग जाएं और फराइज से जो है गाफिल हो जाएं, और कभी ऐसा भी करता है कि जो बाकी फराइज हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो उनके जहन के अंदर बना के रखता है, लेकिन जो असल फर्ज है, पहला फर्ज है ईमान और अकीदा, उसको जो है वो अनइम्पॉर्टेंट बना देता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो ये बात हमें हमारे लिए याद रखना और समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक इम्पैक्ट आज के दौर के अंदर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि दुनिया के दो पार्ट्स हैं इस वक्त हमारे सामने, नॉन मुस्लिम कंट्रीज, एक नॉन मुस्लिम कंट्री इंडिया है और एक नॉन मुस्लिम कंट्री जो है वो अमेरिका है, ठीक है ना, यूरोप को भी आप अमेरिका के साथ ही शामिल कर लें, ठीक है, इंग्लैंड को आप शामिल कर लें, बाकी चलो फ्रांस के अंदर आज़ादी नहीं है और बेल्जियम के अंदर जो है वो नकाब नहीं पहन सकते और दूसरी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा, यहाँ पे कंप्लीट लिबर्टी है मुसलमानों को, ठीक है ना, अमल करने की लिबर्टी है, निकाब के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, बुरके के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड, ठीक है, तो शैतान अब इसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके अंदर मायूसी पैदा कर रहा है, उनके अंदर जो है ना वो ये सोच पैदा कर रहा है कि देखो वहाँ पे कितना अच्छा है और हम जो है वो हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया मुसलमान होना, हालांकि इंडियन मुस्लिम्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडियन मुस्लिम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके पास जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, جو علماء موجود ہیں وہ دنیا میں کہیں ایسے علماء اور ایسے مدارس نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو عمل کرنے کے اندر تو پھر بھی تھوڑا بہت روک سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے, ابھی بھی تھوڑا بہت روک سکتی ہے, لیکن ایمان میں وہ کچھ نہیں کر سکتی, عقیدے کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو انڈین مسلمز کو بجائے اس کے کہ دے اسٹارٹ لوکنگ اپ ٹو امیرکن مسلمز, رائٹ, لوکنگ اپ, دے اسٹارٹ لوکنگ اپ ٹو برٹش مسلمز اور کینیڈین مسلمز, دے واٹ دے ہیو ٹو ڈو از واٹ, آپ جواب دیں, کیا کرنا چاہیے انڈین مسلمز کو, انسٹیڈ آف لوکنگ اپ ٹو امیرکن اینڈ کینیڈین مسلم, واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ, کیا کرنا چاہیے انڈین مسلمز کو, واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ, کیا ایکشن کرنا چاہیے ان کو, بی تھینک فل فار دیئر اون اسٹیٹ, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہیں, پاکستانیوں کو بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, انڈینس کو خاص ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, کیا ایک ایسا عمل جو کہ پاکستانیوں پر اپلائی, یعنی ایکچولی اپلائی تو سب پر ہی ہوتا ہے, لیکن ہاں اپنے علماء سے پکا رشتہ قائم کرنا چاہیے, اپنے علماء سے جو مشائخ اور علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے, بہت کلوز ہو جانا چاہیے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب وہ اپنے علماء سے کلوز ہو جائیں گے نا, تو جیسے کہ داؤد صاحب نے جواب دیا کہ دے شوڈ کیپ دیئر عقیدہ اسٹرانگ, تو ہاؤ ول یو کیپ یور عقیدہ اسٹرانگ, عقیدہ اسٹرانگ رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا, عقیدہ اسٹرانگ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ پکا جوڑ کر کے رہیں, ویری کلوزلی کنیکٹڈ ٹو یور علماء اینڈ مشائخ, ٹھیک ہے نا, ان سے ہر وقت پوچھ کر کے اپنے معاملات معاملات طے کریں, ٹھیک ہے, اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس اگر کوئی آ رہے ہیں, علماء سے پوچھیں, رائٹ, اور ان کو چیک کروائیں کہ کیا یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. ایسے آپ اپنے عقیدے کو اسٹرانگ رکھتے ہیں. عقیدے کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے, کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے, بیکاز عقیدہ از سو ڈیٹیلڈ کہ کتابیں پڑھنے سے عقیدے کا پتہ نہیں لگتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عقیدے کو اسٹرانگ رکھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ علماء سے پکا جڑ کر کے رہا جائے. تو انڈین مسلمز کو نا ان حالات کے اندر یہی کرنے کا کام ہے کہ انسٹیڈ آف لوکنگ آؤٹورڈ دوسرے ملکوں کو دیکھنے کے بجائے وہ اپنے علماء کو اپریشیٹ کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے تعلقات کو پہلے کے بھی مقابلے میں اور زیادہ مضبوط بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ پھر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اگر کوئی کوشچن نہ کسی کے ذہن میں کلاس کے بارے میں ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.